आगे रुकू नंबर 10 है, आयत 92 से 96, कत्ल ख़ता और कत्ल अमत का बयान है इसमें, यानी जानबूझ के किसी को कत्ल कर दिया जाए या गलती से हो जाए, बस हादसा हो गया, कुछ और भी वजूहत होती हैं, तो उसकी क्या सज़ा है। वमा कान अली मोमिन नहीं युक्तल मोमिन अनिल्ला ख़ता, किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना लायक नहीं मगर गलती से हो जाए तो और बात है, और जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद यानी बिला इरादा मार डाले, इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के अजीज़ों को खून बहा पहुंचाना है। हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका मुआफ़ कर दें, और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान, तो सिर्फ़ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करानी लाजमी है। यहाँ आप देखिए कि इस्लाम में गर्दन की या जान की कितनी हुरमत है, कितने सेट डिफाइंड रूल्स दिए जा रहे हैं, और अगर मकतूल इस कौम से हो कि तुम में और इस में अहदों पे माँ है, तो खून बहा लाजिम है यानी ब्लड मनी जो इसके कुंबे वालों को पहुँचाया जाए, और एक मुसलमान ग़ुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है, बस जो ना पाए उसके ज़िम्मे लगातार 2 महीने के रोज़े हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए। कौन सा कत्ल है? ख़ता के जान के, तो आप सोचिए कि कत्ल अमद का क्या सज़ा होगी फिर। और अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, अल्लाह ताला बखूबी जानने वाला और हिकमत वाला है, यानी मोमिन की जान की बड़ी कीमत है, इससे ये बात समझ आ रही है। और जो कोई किसी मोमिन को कसदन यानी जानबूझ के कत्ल कर डाले, इसकी सज़ा दोजख है जिसमें वो हमेशा रहेगा, इस पर अल्लाह का गज़ब है, इसे अल्लाह ताला की लानत है और इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। क्या हम आयत 93 सूरत निसा आम कर दें तो दुनिया से कितने कत्ल ख़त्म ना हो जाएं? बात बात पे कत्ल, भाई का कत्ल, बहन का कत्ल, अल्लाह कहते हैं हमेशा की जहन्नुम है, अल्लाह बचा के रखे सबको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो, और जो तुमसे सलाम अलैक करे तुम इसे ये ना कह दो क्या कि तुम ईमान वाले नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, पहले तुम भी तो ऐसे ही थे, यानी दूसरों पे फतवे देने से पहले देखो इस दीन आने से पहले तुम खुद क्या करते थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम पर एहसान किया, बस तुम ज़रूर तहकीक और तफ्तीश कर लिया करो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बाखबर है। क्या पता चला कि राह जाते अफवाहें मत फैलाया करो, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बग़ैर उज़र के बैठ रहने वाले मोमिन बराबर नहीं, इसको हाईलाइट कीजिए, आने वाले ना आने वालों के बराबर नहीं, बैठने वाले खड़े होने वालों के बराबर नहीं। मुराजे के जो जितनी कोशिश कर रहा है उसको उतना अजर मिलेगा, जितना गुड़ उतना मीठा। रोज़ा रख के आप कुरान सुन रहे हैं, ये रोज़ा के बग़ैर सुनने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप में कुछ लोग कितनी दूर से आते हैं ना माशाल्लाह, मुझे भी अंदाज़ा है, कुछ लोग ख़ुद भी बताते हैं। मैं गेस करती हूँ कि कराची की रश और रौनक वाली जगहों में 1-1.5 घंटा लगता होगा आप में से कुछ लोगों को आते हुए, तो क्या आपका अजर अल्लाह नहीं देगा? आपका दौरे कुरान 2-2.5 घंटे का नहीं है, आपका आने का जाने का 1-1 घंटा मिला के आप तकरीबन 4-5 घंटे का दौरे कुरान कर रहे हैं। एक बिल्कुल साथ वाले घर से उठ के आ रहा है, अब क्या करें उसका, थोड़ा वो दूर चला जाए? नहीं, अल्लाह को बताया कि जो साथ वाले घर से आए ना इसने दूर से भी आ जाना था, और जिसको नहीं आना उसको करीब से भी नहीं आना। बता क्या चला, अल्लाह ताला ने नेकियों के मौके दिए होते हैं, जो उस पर लब्बैक कहता है अल्लाह ताला उसको उसका अजर उतना ज़्यादा देता है। इसीलिए फरमाया अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ताला ने दर्जों में बहुत फजीलत दे रखी है। आपको पता है कि जन्नत के 100 दर्जे होंगे, ये फ़र्क है, इसी का फ़र्क है कोशिशों का। कोई घर में माहौल अच्छा है उसमें आ रहा है, किसी को मुश्किल है उसको आ रहा है, किसी को इजाज़त नहीं किसी को इजाज़त है, तो आपका जितना इस रास्ते में इनपुट है ना, इंशाल्लाह उसके मुताबिक कल जन्नत में आपका मुकाम होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको ही जन्नतुल फिरदौस अता कर दे। और यूँ तो अल्लाह ताला ने हर एक को खूबी और अच्छाई का वादा दिया है, लेकिन मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत दे रखी है, अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी, और अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला रहम फरमाने वाला। क्या पता चला, ऐसे लगता है कि अल्लाह को बहुत प्यार आता है उन लोगों पे जो उसके रास्ते में दौड़ धूप करते हैं। साहबा पे अल्लाह को प्यार क्यों आता था? अब तो क्लियर होता जा रहा है ना, कहीं साहबा की कोई नफली इबादत का इतना तذکرہ नहीं मिलेगा आपको, वो भी थी लेकिन वो बुनियादी वजह नहीं थी उनके चुनाव की। चुनाव अल्लाह के रास्ते की दौड़ धूप का है, मिशन का फ़र्क है। साहबा कराम ओहदों की अहमियत को समझने वाले थे, शरीयत के अहकामात पे बिला चूँ चराम अमल करते थे, अपनी गलती का इतराफ़ करते थे और फिर गलतियों को सुधारते भी थे। स्टबन नहीं थे कि मैंने कह दिया तो बस ठीक है। और इसी तरह से आयत 95 में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को फजीलत दी। साहबा करम जिहाद को अपने लिए मुकद्दम यानी प्रायोरिटाइज समझते थे और बिला उजर कभी इससे पीछे नहीं हटते थे क्योंकि उनको अल्लाह के वादों पे भरपूर यकीन था। आपका मेरा ये यकीन ही हमें इंशाल्लाह लेके चलेगा। अब देखिए कि आपने सूरत निसा में एक तो सुना है, कह लीजिए तहारत, वुजू, तयम्मुम, नमाज, लेकिन साथ जिद्दोजहद है। साहबा कराम की खूबी क्या थी? नमाज और दीन की जिद्दोजहद दोनों साथ साथ चलती थी। रोज़े नहीं छोड़ते थे जिहाद के दौरान भी। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सफ़र में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बियाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुरबत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें सजदों का इतना शौकीन बना दे। आपके मेरे अमल की बातें इसमें क्या हैं? कत्ले नाहक से कराहत हासिल कीजिए, दोस्त और दुश्मन में तमीज़ करनी है, मामलात की तहकीक करके नतायज तक पहुंचना, यानी बिला तहकीक बात को आगे नहीं बढ़ाना, बुराई के खिलाफ मुआशरे में जिहाद करना है, तौबा करनी है और जिहाद फी सबीलिल्लाह की रग़बत दिलानी है। और रुकू नंबर 11 आयत 97 से 100, अल्लाह की राह में हिजरत की अहमियत, इसको ज़रा बड़ी मोहब्बत से सुनिएगा क्योंकि दीन का एक बड़ा खूबसूरत रूप हिजरत है। कैसे? इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइका, जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे, यानी तुम्हारे ईमान की क्या कैफियत थी, यानी पूछते कितने घर थे, उधर बंगले थे, यानी क्या करके आए हो। ये जवाब देते हैं क्या करें, हम अपनी जगह कमज़ोर थे और मغلوب थे, तुम्हें पता ना हम मिनॉरिटी थे, हम अकलियत थे, हम दबे हुए थे, हम तो नॉन मुस्लिम मुल्क में थे। फरिश्ते का जवाब सुनिए, फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह ताला की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते? किसने कहा था बैठे रहो डॉलर्स के लिए? किसने कहा था लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए बैठे रहो? जिसको अपने दीन को बेचकर गैर मुस्लिम मुल्क में रहना पड़े वो फितने में है, जो अपने दीन को छुपा के किसी गैर मुस्लिम मुल्क में गया वो नुकसान में है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके दुनिया में बैठा रहा वो नुकसान में है। क्यों? यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोजख है और वो पहुंचने की बुरी जगह है। तो फिर सवाल ये है कि क्या करें, ना जाएं ना बैठें? एक रीज़न, ओनली वन रीज़न है किसी नॉन मुस्लिम मुल्क में जाके रहने की, और वो क्या है? वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता। साहबे किराम इस सबक को पढ़े और याद रखे हुए लोग थे। नबी सल्लम के जाने के बाद मदीना शहर खाली होने लगा। ये जितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें ना, रोम, फारस, ईरान, नजाशी का, हबशा और इसी तरह, ये सहाबा की तबलीगी कोशिशों से इस्लाम वहाँ पहुँचा था। तलवारें लेके तो नहीं गए, कलम लेके गए थे। आज जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, अगर इन सब के जाने का मकसद इबलाग होता, तबलीग होती, तो सिर्फ डॉलर्स ना ये कमाते, औलादों का सुकून भी मिल जाता, खुशियाँ भी मिलती, ला खौफ अलैहिम होता, फिर ये सूद में ना डूबे होते, कर्ज़ों में ना डूबे होते, फिर इनके दिलों पे गिल्ट ना होता, बस एक वजह। और जब मुसलमानों ने ये छोड़ा, अपने बच्चे भी इस्लाम पे ना रहे, जाके लोगों के आंसू तो पोंछिए। अपने बच्चे का दीन, अपनी बच्ची का दीन मशकूक। अपना शौहर बेदीन तो छोड़िए, कई की औरतों के साथ इंटरेस्टेड है। और आज अपने मुल्कों में भी ये कोई कम नहीं है। आज जितनी आफतें उम्मते मुस्लिमा पे पूरी दुनिया में ना, उसकी वजह ये है कि हमने लोगों को अल्लाह से जोड़ना छोड़ा हुआ है। आज भी सीनों में ठंडक, चेहरों पे इत्मीनान, खुशी आपको सिर्फ उन लोगों के दिखेगी जो लोगों को अल्लाह से जोड़ते हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई और गरज नहीं, कोई माल नहीं, कोई शोहरत नहीं, कोई किसी नाम से मसलक से लगाव नहीं, सिर्फ ये है कि मेरी कोशिशों से ये लोग बच जाएं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कैसे लोगों को बता दो ये बात कि अगर तुम अपने मुफादात के लिए बैठे रहे तो फिर आप रो के मुझे ना कल दिखाना। देखिए बच्चा थोड़ी पकड़ के बादाम तोड़े, माँ समझाए, देखो हाथ पे लग जाएगी, हाथ पे लग जाएगी। नहीं समझ रहा, शौक है ना तजुर्बों का, वो अंदर बादाम खोलना था ना। माँ कहती है देखो अगर हथौड़ी लगी, चोट लगी तो रोते हुए मेरे पास ना आना। और वाकई ऐसा होता है। आज के मुसलमानों को अल्लाह ये पैगाम देता है, अब मुझे रो के ना दिखाओ, मेरे से शिकवे शिकायतें ना आके हरम में किया करो, ये बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, सुकून नहीं है क्योंकि तुमने मेरा काम छोड़ दिया, तुम्हारे दिल में दर्द ही नहीं, तुम बेदर्द हो, तुम हर जाई हो। आज पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया में हर जगह। वो कहते हैं ना बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे, अल्लाह आपको आयत 98 में क्या कहते हैं, मगर जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं, इन्हें ना तो किसी चारेकार की ताकत है और ना किसी रास्ते का इल्म है। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह इनसे दरगुजर करे, क्योंकि अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। हम पैसे भेज देते हैं, जाओ सीरिया में पैसे भेज दो, जाओ फलां जगह, मुसलमान बेचारे यमन में फंसे हुए हैं, बर्मा में मुसलमान है। कभी तुमने सोचा कि दुश्मन को इतनी जरूरत कैसे मिली? इसलिए मिली कि तुमने उस दुश्मन को इस्लाम नहीं दिखाया। देखिए कलम उठा लें आप, हथियार नहीं उठाने पड़ेंगे। आप इन गैर मुस्लिमों तक कुरान का पैगाम आम कर दीजिए, ये कभी आपके नबी के कार्टून नहीं बनाएंगे, ये कभी आपको टेररिस्ट नहीं करेंगे। हम तो वी आर टू बिजी विद दुनिया, अभी डॉलर कमा के गिनने भी हैं, अभी उसको इन्वेस्ट भी करना है, कहाँ रखें, इसको टैक्स से कैसे बचाएं, इसको इधर उधर कैसे मूव करें, 100 गम पड़े हैं। हमसे नहीं होता अल्लाह का काम। हाँ मस्जिद में नमाज जाके पढ़ पढ़ाएंगे। आज मुसलमान इस बात की सज़ा खा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों को बता दो कि हिजरत का क्या अजर है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आयत ऑफ दिस पॉइंट देखिएगा, जो कि अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा वो ज़मीन में बहुत सी क्याम की जगह भी पाएगा। इट्स ट्रू, आई कैन गिव यू द विटनेस, इट्स ट्रू। और कुशादगी भी, और जो कोई अपने घर से अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो यकीनन इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी अभी मंजिल पे पहुँचे भी नहीं, रस्ते में और मौत आ गई। अल्लाह को ये हिजरत, ये रस्ते, अल्लाह के लिए दर बदर जाना, अल्लाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र इतना प्यारा लगता है कि अल्लाह उसको जन्नत लिख के दे देता है। और क्या चाहिए, हो सकता है नफलें पढ़ने से भी वो जन्नत ना मिले, तस्बीह नमाज से भी जन्नत ना मिले, मरने वालों के पीछे सपारे पढ़ पढ़ के साले सवाब करने से भी वो जन्नत ना मिले जो अल्लाह की नाफरमानी को छोड़कर फरमाबरदारी की तरफ आने या ऐसी जगह को छोड़कर आने पे आपको मिल जाए। क्या सीखा, अमल वाली बात नोट कीजिए, अल्लाह की ज़मीन बड़ी गुंजाइश वाली है। जहाँ जिस जगह जिस ख़ानदान जिस माहौल में नेकियों पे अमल करना मुश्किल हो जाए उसको छोड़ दीजिए। आज कितनी नेक औरतें जानी पापी शराबी मर्दों के साथ ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, यहाँ ये भी ख़ानदानी निज़ाम के साथ नोट कर लें, कतन इसकी इजाज़त नहीं है। पहले बेजोड़ शादियाँ, बल्कि उससे भी पीछे जाइए तो बद तहज़ीब तरबियत, हलाल हराम का फ़र्क दिए बगैर बेटे को पाला, CA कर दिया, BA कर दिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लड़की वालों ने फ़ौरन लड़की दे दी कि जी लड़का डॉक्टर है, जी CA है, जी फलां है, जी पायलट है। जब लड़की उस घर में गई पता चला उसको नमाज भी नहीं आती, कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ, एक दो लड़की से भी ताल्लुक है, 2 साल बाद पता चला एक बच्चा भी है, अब रोएगी बैठ के बच्ची, और वो तो औरतों के साथ है। अल्लाह कहते हिजरत करो ऐसे मर्द से, ऐसे गंदे मर्द को पहले मौका दो, मोहलत दो, تربیت کرو، اس کے ساتھ رہ کے الگ رکھو، اس کو قرآن کا پیغام دو، حتی یسم کلام اللہ، آگے سورۃ توبہ میں پڑھیں گے۔ مشرقین نے مکہ کو 4 ماہ کی مہلت دی تھی، تم بھی اپنے بے دین شوہر کو دے دو یا بے دین بیوی کو دے دو اگر نہیں مانتی، اور اگر نہیں مانتے فتوحاجر فیس، نکل جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ آج ہمارا یہ چیپٹر ہی بند ہے، ہر بات پہ ہم اعتراض کرتے ہیں، دین پہ کہتے ہیں چپ چپ چپ، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بچی ہے، وہ کہتی ہے کہ جب شادی کے بعد دیکھا کہ میاں ایسا ویسا ہے، تو کچھ دن کے بعد ذرا ساس سے بات کی، کہنے کہ چپ کر جا، اس کا باپ بھی ایسا ہی تھا، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، چپ چپ۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ تو پھر جو بچے بگڑیں گے، پھر وہ بچے باپ کو دیکھ کے بگڑیں گے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ 35 سال شادی ہوئی ہوئی ہے اور ایک 50, 55, 60 سال کی عورت آ کے کہتی ہے آپ میری بس ہو گئی، میں اس سے طلاق لے لوں، کیوں بھائی کیا ہوا ہے؟ اس میں سارے ساتھ کے ساتھ شرعی عیب ہے مرد میں۔ میں نے کہا آپ کو اب خیال آیا؟ کہتی ساری زندگی لوگوں نے کہا چپ چپ چپ، لیکن اب گھر میں بہو آ چکی ہے اور اس کے سامنے جب یہ گندے کام ہوتے ہیں تو یہ مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، داماد کے سامنے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں، اب یہ نہیں برداشت ہوتا، یہ ظلم ہے۔ آپ اس کو صبر کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے ہجرت کرو، اللہ کے نام پر ایک کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اسے اچھا دے دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ سبق ہمارے چیپٹر ہی کلوزڈ ہیں، اس کے پیج، وہ جو کبھی کتاب خریدتے تھے تو 2 صفحے جڑے ہوتے تھے نا، ہمارے کلچر میں ایسے موضوعات کھولنے ہی نہیں گئے، نہ مسجدوں میں کھولے گئے نہ تدریس میں کھولے گئے، چپ چپ چپ۔ بچیاں نہیں بولتی، کیا نہیں بولتی، اللہ تو بہت کچھ کہتا ہے۔ تو یہاں ہجرت کی اس اہمیت کو بھی سمجھیے، اور سب سے بڑی بات ہے نفس پہ یہ ظلم ہوتا ہے، ایسے ماحول میں جان بوجھ کے رہنا جہاں گناہ کرنا آسان اور نیکی مشکل ہو، یہ اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ اور گھر سے نکلتے ہی ہجرت کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی یقین رکھیے، اور اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا، جو اپنے آپ کو بدل لے، توبہ کر لے، سوری کہہ دے، بالکل پھر بالکل ساتھ رہنا، کوئی حرج کی بات نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید بھی رکھنی ہے۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 12، آیت نمبر 1 سے 104، نماز اللہ کی یاد ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم سفر پر جا رہے ہو اور تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی جب سفر میں نماز کا وقت آ جائے تو، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی ہو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے، اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، میدان جنگ میں تیروں کی جھاؤں میں، اور وہاں بھی نماز جماعت سے پڑھی جا رہی ہے۔ آج عام گھر بیٹھے مرد جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو کتنا اللہ کو غصہ نہ آئے گا۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جب کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے یا بسبب بیمار ہونے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ آج نمازیں بہت ڈھیلی ہیں، یہ جو خاندانی نظام جس کے ہم اصول و ضوابط سیکھ رہے ہیں نا، تو جن گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہے وہاں سکون ہوگا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمائے، ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکیم ہے۔ کیا پتہ چلا؟ آیت 102 میں ہم نے صلاۃ الخوف کا طریقہ پڑھا، صحابہ کی دین سے محبت، اور امیر کی اطاعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر جب مان لیا نا تو پھر پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ نماز کے طریقے میں بھی کتنی چینجز آ رہی ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت بھی ساتھ ہی رہے۔ اپنے قائد سے محبت اور اطاعت کی داستان تھے صحابہ، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے دین کو لیتے تھے۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی باتیں، نماز وقت کے اوپر پابندی سے پڑھیے۔ کیا صرف رمضان میں؟ صرف عمرے پہ جانے پہ؟ نہیں، ہر وقت نیت کرتے۔ رمضان میں تو خود بہت نمازیں بہت جنرلائزڈ ہو جاتی ہیں نا، انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، दुश्मन के ताकुब में कमज़ोरी नहीं दिखानी और लोगों में हक के साथ फैसले करने हैं और नमाज की हकीकत को समझना है और अल्लाह ताला से उम्मीदें लगानी हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है जी रुकू नंबर 13 आयत 105 से 112। फैसले हक और इंसाफ के साथ होंगे। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक। यहाँ अब आगे एक वाक़या आएगा, दो तीन रुकू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक बड़े ख़ास वाक़े के, इसके तर्जमे पे गौर करिएगा तो आपको ख़ुद भी समझ आएगा इंशाल्लाह। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक़ के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है ताकि तुम लोगों में इस चीज़ के मुताबिक फ़ैसला करो जिससे अल्लाह ताला ने तुमको शनासा किया है, और ख़यानत करने वालों के हिमायती न बनो, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबानी करने वाला है, और इनकी तरफ से झगड़ा न करो जो ख़ुद अपनी ही खयानत करते हैं, बल्कि दगाबाज गुनाहगार अल्लाह को अच्छा नहीं लगता, वो लोगों से छुप जाते हैं। असल में किसी गिरोह ने बिरादरी के नाम पर गलत बंदे की हिमायत की थी और अल्लाह के नबी को धोखा देना चाहा था, उस पर ये सारी आयात आ रही हैं। फरमाया वो लोगों से छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह इनके पास होता है, इनके तमाम आमाल को वो घेरे हुए है। हाँ तो ये हो तुम लोग कि दुनिया में तुमने इनकी हिमायत की, लेकिन अल्लाह ताला के सामने क़यामत के दिन इनकी हिमायत कौन करेगा, और वो कौन है जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा। जो शख्स कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबानी करने वाला पाएगा, और जो गुनाह करता है इसका वो इसी पर है, और अल्लाह ताला बखूबी जानता है और पूरी हिकमत वाला है। जो शख्स कोई गुनाह या ख़ता करके किसी बेगुनाह के ज़िम्मे थोप दे इसने बड़ा बहतान उठाया और खुला गुनाह किया। ज़रा सा अपना जायज़ा लीजिए, क्या मैं दूसरों पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाती। अमल की बातें, अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ करनी है, ख़यानत करने वालों की हिमायत नहीं करनी, कोई बिरादरी से है सिर्फ इस बुनियाद पे उसका साथ नहीं देना, बददियानत लोगों का साथ नहीं देना, और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ छुप छुप कर मशवरे नहीं करने, बेगुनाह पर बुख्तान नहीं लगाना और बुराइयाँ छोड़ना है। हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें आम तौर पर दूसरों की नज़रों में तो अच्छा लेकिन अल्लाह की नज़रों में बुरा बना देते हैं। अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि हम हर वो काम करें जो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी का हो।